डैनियल की पुस्तक संख्या 131, भविष्यवाणी के ताने बाने का अनावरण, प्रकाशित वाक्य से वर्तमान वास्तविकताओं तक कड़ियां जोड़ना। पिछले लेखों में हमने ये पहचाना कि मिलरवादी ये मानते थे कि वे 10 कुआरियों के दृष्टांत, हबक्कूक अध्याय 2 और यहेजकेल अध्याय 12 पद 21 से 28 की पूर्ति कर रहे थे। यहेजकेल के ये पद बताते हैं कि जब ये तीनों भविष्यवाणी संबंधी खंड अंतिम दिनों में पूर्ण रूप से पूरे होंगे, तब हर दर्शन का प्रभाव पूरा होगा। बहन वाइट भी इस विषय को संबोधित करती हैं।
प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सारी पुस्तकें मिलती और समाप्त होती हैं। यहाँ दानियल की पुस्तक का पूरक है, एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकाशना है। जो पुस्तक मुहरबंद की गई थी वो प्रकाशित वाक्य नहीं बल्कि दानियल की भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। दूत ने आज्ञा दी, परंतु तू हे दानियल इन वचनों को बंद कर दे और पुस्तक पर अंत के समय तक मुहर बगा दे। दानियल 12:4। प्रेरितों के काम 550।
10 कुआरियों का दर दृष्टांत 144,000 की मुहरबंदी के समय में अक्षरशाह दोहराया जाता है जो 11 सितंबर 2001 को शुरू हुआ था और तब समाप्त होगा जब शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय मूर्ख कुआरियों पर द्वार बंद कर दिया जाएगा। इतिहास की उस अवधि में बाइबल की सभी पुस्तकों का मिलना और अंत में निरूपित प्रत्येक दर्शन का प्रभाव प्रकट होता है। पिछले लेख में हमने समझ का एक आधार बनाया है ताकि दानियल 11 के 40वें पद में दर्शाई गई इतिहास की बाहरी रेखा प्रस्तुत की जा सके, जो पृथ्वी के पशु के रिपब्लिकन सिंह के राजनीतिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है। वो इतिहास पृथ्वी के पशु के सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह के धार्मिक इतिहास के समानांतर चलता है। हमने कुछ भविष्य सूचक रेखाएं पहचानी हैं जो पृथ्वी के पशु के रिपब्लिकन सिंह से संबंधित हैं और हम उन रेखाओं को उस भविष्य सूचक इतिहास पर स्थापित कर रहे हैं जो 1989 में अंत के समय से आरंभ हुआ। धरती के पशु का वो भविष्य सूचक काल जो 1776 में आरंभ हुआ और 1798 में अंत के समय समाप्त हुआ, वो रेखा है जिसका उपयोग हम उन सभी रेखाओं को जो अब अपना प्रभाव डाल रही हैं एक साथ लाने के प्रयास में करना चाहते हैं। 1776 से 1798 का काल अल्फा और ओमेगा की छाप लिए हुए है क्योंकि ये एक विधायी कार्रवाई से आरंभ होता है और उसी से समाप्त भी होता है जो कि एक राष्ट्र का बोलना है।
किसी राष्ट्र का बोलना उसकी विधायी और न्यायिक प्राधिकरणों की कार्रवाई है। The Great Controversy 443।
पृथ्वी के पशु की एक मुख्य विशेषता उसकी वाणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक दैवीय दस्तावेज था जिसने धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के द्वार खोले और ऐसा करते हुए यूरोप के राजाओं और कैथोलिक चर्च द्वारा सदियों से चलाया जा रहा उत्पीड़न की बाढ़ को निगल ली।
और सर्प ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से बाढ़ के समान जल उगल दिया ताकि बाढ़ उसे बहा कर ले जाए, और पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर उस बाढ़ को निगल लिया जिसे अजगर ने अपने मुंह से उगला था। प्रकाशित वाक्य 12:15-16।
बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में पृथ्वी के पशु के शासन के अंत में वो फिर से बोलेगा, पर तब वो रविवार के कानून को लागू करके अजगर की तरह बोलेगा।
और मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से ऊपर आते देखा और उसके मेमने के समान दो सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। प्रकाशित वाक्य 13:11।
धरती का पशु 1798 में छठे राज्य के रूप में आरंभ हुआ जब पोप तंत्र की शक्ति छीन ली गई
और जब पोपत तंत्र से वंचित होकर उत्पीड़न करना बंद करने के लिए विवश हुआ, तब यूहन्ना ने देखा कि एक नई शक्ति उभर रही है जो अजगर की वाणी को प्रतिध्वनित करे और उसी क्रूर और ईशन निंदापूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाए। ये शक्ति जो कलीसिया और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली अंतिम शक्ति है, का प्रतीक मेमने के समान सींगों वाला एक पशु था। साइंस ऑफ द टाइम्स 1 नवंबर 1899।
1700 नंबर का मीते में जब पापसी को उसका घातक घाव लगा, संगत राज्य अमेरिका ने बोला और जैसा कि अल्फा और ओमेगा के साथ हमेशा होता है, आरंभ में बोली गई वाणी ने अंत में बोली जाने वाली वाणी का पूर्वाभास कराया। 1700 नंबर का मीते में एलियन और सेडिशन अधिनियमों को कानून के रूप में पारित किया गया, जिन्होंने अंत में लागू किए जाने वाले अवैध आवर्जन और मीडिया को संबोधित करने वाले कानूनों का पूर्वाभास कराया। साथ साथ सच सी मी नीतिर के साथ 1798 तक की जिस अवधि पर हम विचार कर रहे हैं उसमें अल्फा और ओमेगा की छाप है, क्योंकि ये प्रारंभिकता की शुह देशाओं के बोलने की पहचान कराती है, जो साथ साथ सच सी मी नीतिर एलियन और सेडिशन अधिनियमों का प्रतिरूप है। उस अवधि के मध्य में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मिलता है। ये अवधि पृथ्वी के पशु के शासन का भविष्यवाणी पूर्ण निरूपण प्रस्तुत करती है, क्योंकि ये मेमने की तरह बोलना शुरू करती है। परंतु ये अवधि ऐसे कानूनों के साथ समाप्त होती है जो अजगर का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर जैसा अक्सर होता है किसी बात की शुरुआत और समाप्ति विपरीतों के साथ मेल खाती है। इस अवधि का पहला मार्ग चिन्ह अंतिम मार्ग चिन्ह में निरूपित होता है, और मध्य का मार्ग चिन्ह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान था जिसे 13 राज्यों ने अनुमोदित किया था। हिब्रू शब्द ट्रूथ पहले अक्षर से, फिर 13वें अक्षर से और फिर हिब्रू वर्णमाला के अंतिम अक्षर से बना था। जिस अवधि पर हम अभी विचार कर रहे हैं वो प्रथम और अंतिम, जो सत्य है, की छाप लिए हुए है। ये अवधि उस अवधि का प्रतिनिधित्व करती है जो पृथ्वी के पशु के शासन के आरंभ तक ले जाती है, जो बाइबल की भविष्यवाणी का 6ठा राज्य है, और इसलिए ये उस अवधि का भी प्रतिनिधित्व करती है जो पृथ्वी के पशु के शासन के अंत तक ले जाती है, जो बाइबल की भविष्यवाणी का 6ठा राज्य है। वो अवधि 1889 में अंत के समय में शुरू हुई। 1776 से 1798 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक की अवधि पर अध्यारोपित किया जाना है, जब पृथ्वी का पशु अजगर की भांति बोलता है, जैसा कि एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स द्वारा दर्शाया गया है। हमारे अध्ययन में एक और भविष्य सूचक सत्य को शामिल करना सार्थक है। वो सत्य अंत का समय के एक प्रतीकात्मक तत्व से जुड़ा है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लाओदिकियन एडवेंटिज्म भली भांति जानता हो सकता है कि अस्सेतीनाइटे अंत का समय था, परंतु उनकी समझ सामान्यतः वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि हर सुधार रेखा अन्य सुधार रेखाओं के समानांतर चलती है। हर सुधार रेखा की शुरुआत अंत के समय से होती है। मूसा मसीह के प्रति थे और मूसा ने स्वयं उस तथ्य को स्पष्ट रूप से कहा, और पतरस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में उसकी पुष्टि की।
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए तेरे ही बीच से, तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना। व्यवस्था विवरण 18:15।
यीशु को मूसा के समान होना था।
और अब भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये अज्ञानता से किया जैसे तुम्हारे शासकों ने भी किया, परंतु जो बातें परमेश्वर ने पहले अपने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से दिखाई थीं कि मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने पूरा कर दिया है। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की उपस्थिति से ताजगी के समय आएं, और वो यीशु मसीह को भेजेगा जिसका प्रचार पहले तुम्हारे बीच किया गया था, जिसे स्वर्ग को अपने पास रखना है जब तक कि सब बातों की पुनर्स्थापना के समय ना आ जाए, जिनके विषय में परमेश्वर ने जगत के आरंभ से अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है। क्योंकि मूसा ने सचमुच पितरों से कहा था, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता तुम्हारे लिए उठाएगा, वो तुमसे जो कुछ भी कहे उन सब बातों में तुम उसकी सुनना। और ऐसा होगा कि हर एक व्यक्ति जो उस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा वो लोगों के बीच से नाश कर दिया जाएगा। हाँ, और शमूएल से लेकर उसके बाद के जितने भविष्यद्वक्ता हुए हैं, जितनों ने भी बोला है, सब ने इन दिनों के विषय में भी पहले अपने से कहा है। प्रेरितों के काम 3:17 तौजीसिस।
मूसा के इतिहास में अंत का समय उसका जन्म था, और वो मसीह के जन्म का प्रतीक था। मसीह और मूसा दोनों के जन्म के समय ज्ञान में ऐसी वृद्धि हुई जिसने उस पीढ़ी की परीक्षा ली। दोनों के जन्म के बारे में इस ज्ञान ने मिस्र और रोम दोनों की ड्रैगन शक्ति को भविष्यवाणी में प्रतिज्ञित जनों को मार डालने का प्रयास करने के लिए उकसाया। पहाड़ियों पर के चरवाहे और पूरब से आए ज्ञानी पुरुष उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने अंत के समय में ज्ञान में हुई वृद्धि को समझा। अक्सर जो बात अनदेखी रह जाती है वो ये है कि समय के अंत में दो मार्क चिन्ह हैं। सिर्फ मूसा ही पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनसे 3 वर्ष पहले उनके भाई हारून का जन्म हुआ था। मसीह के जन्म से 6 महीने पहले उनके चचेरे भाई यूहन्ना का जन्म हुआ था। 1799 को समय के अंत की सबसे सामान्य पहचान माना जाता है, और 1799 में वो पशु राजनीतिक तंत्र जिस पर वेश्या ने अंधकार युग भर सवारी की थी मारा गया, और 1 वर्ष बाद उस पशु पर सवारी करने वाली स्त्री भी मर गई। 1985 में 2 राष्ट्रपति थे। 1989 के शपथ ग्रहण तक रीगन ने शासन किया, और इसके बाद बुश प्रथम ने अपना शासन शुरू किया। 1260 वर्षों का अंत बेबीलोन में 70 वर्षों की बंधुआई द्वारा दर्शाया गया था, और जब जनरल साइरस डारियस का भतीजा ने भोज की रात बेलशज्जर को मृत्यु दंड दिया, तब वास्तविक राजा डारियस था। डारियस और साइरस उस अंत के समय के दो मार्ग चिन्हों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूसा और हारून, यूहन्ना और यीशु, दारा और कुरु, पोप पद और पोप तथा रीगन और बुश के बीच के भविष्य सूचक संबंध जब सही पद्धति से अध्ययन किए जाते हैं तो सभी भविष्य सूचक प्रकाश के स्रोत सिद्ध होते हैं। या हम ये इंगित करना चाहेंगे कि यूहन्ना यीशु का कजिन मरुभूमि में पुकारने वाले की आवाज था, जिसका पूर्व रूप मूसा के भाई हारून में दिखाई देता है, जो मूसा से मिलने और उसकी आवाज बनने के लिए मरुभूमि में गया था। मसीह के अभिषेक से पहले के 30 वर्षीय काल में और विरोधी मसीह से पहले के 30 वर्षों में एक ऐसा मार्ग चिन्ह है जो एक आवाज की पहचान कराता है। मसीह के लिए वो जंगल में पुकारने वाले यूहन्ना की आवाज थी। 533 में जस्टिनियन ने एक फरमान जारी किया जिसमें विरोधी मसीह को विधर्मियों का सुधारक और कलीसिया का प्रमुख घोषित किया गया। जस्टिनियन का वो फरमान वो आवाज था जिसने 538 में ऑर्लियंस की परिषद में रविवार कानून के फरमान की भूमिका तैयार की। जनरल साइरस की सेना वो आवाज थी जो ये संकेत दे रही थी कि डारियस द्वारा बेबीलोन पर विजय आसन्न थी।
कुरूश की सेना का बाबुल की प्राचीरों के सामने आगमन यहूदियों के लिए इस बात का चिन्ह था कि उनकी बंधुआई से मुक्ति निकट आ रही है। कुरूश के जन्म से 1 शताब्दी से भी पहले ईश्वरीय प्रेरणा ने उसका नाम लेकर उल्लेख किया था, और बाबुल नगर को अचानक जीत लेने तथा बंधुआई में पड़े लोगों की रिहाई के लिए मार्ग तैयार करने में वो जो वास्तविक काम करेगा उसका लेखा भी पहले से लिखवा दिया था। ये वचन यशाया के द्वारा कहा गया था। यहोवा अपने अभिषिक्त कुरूश से यूं कहता है, जिसका दाहिना हाथ मैंने थाम रखा है ताकि मैं उसके आगे आगे जातियों को वश में कर दूं, उसके सामने 2 पल्लों वाले फाटक खोल दूं और फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ हाबड़ स्थानों को समतल कर दूंगा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ दूंगा और लोहे की कड़ियों को काट डालूंगा, और मैं तुझे अंधकार के खजाने और गुप्त स्थानों के छिपे हुए धन दूंगा, ताकि तू जान ले कि मैं यहोवा जो तुझे तेरे नाम से बुलाता हूँ इज़राइल का परमेश्वर हूँ। यशाया 45:23 करके भविष्यद्वक्ता और राजा 551।
जब ये पहचाना जाता है कि भविष्य सूचक अंत का समय दो साक्षियों या दो मार्ग चिन्हों द्वारा स्थापित होता है, तब ये भी पहचाना जा सकता है कि उन दो मार्ग चिन्हों में से एक आने वाले इतिहास की पहचान, घोषणा या चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता है। हारून, यूहन्ना, कुरूश और जस्टिनियन एक ऐसे मार्ग चिन्ह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंत के समय से पूर्व आता है। 1798 में अंत का समय 1776 से 1798 में तक फैले कालखंड का अंत है। उस इतिहास के मध्य का मार्ग चिन्ह आने वाले इतिहास के लिए जंगल में पुकारने वाली आवाज है। वो इतिहास एक ऐसे प्रकाशन से आरंभ हुआ जिसने राजा या पोप किसी भी के निरंकुश शासन को अस्वीकार किया, और उसका अंत एक ऐसे प्रकाशन के साथ हुआ जो एक तानाशाह के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता था। बीच का प्रकाशन आने वाले इतिहास की चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता था, और वो चेतावनी ये थी कि उस इतिहास के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान उलट दिया जाएगा। इतिहास की वो रेखा 1989 में फिर से दोहराई जाने लगी। और ये रविवार के कानून पर तब समाप्त होती है जब 1789 में 200 वर्ष पहले वन से आई ग्रानोनों को अस्वीकार कर दिया जाता है। 1989 में पथ 40 के अंत में अंत का समय था और ये 1798 के अंत के समय के साथ मेल खाता है। 1989 1776 के साथ मेल खाता है और रविवार का कानून 1798 का प्रतिनिधित्व करता है। इतिहास के मध्य में जहां प्रत्येक दर्शन का प्रभाव सिद्ध होता है, 11 सितंबर 2001 को जो इतिहास आरंभ हुआ और 1789 की चेतावनी तक चलता है वो पूरा होता है और संविधान उलट दिया जाता है। बीच में एक मार्ग चिन्ह अवश्य होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो मार्ग चिन्ह शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से आरंभ होने वाले भविष्य सूचक इतिहास के लिए एक चेतावनी का प्रतिनिधित्व करेगा। 1985 पद 40 में वर्णित अंत के समय को चिन्हित करता है, जो पद 21 में आने वाले रविवार के कानून की ओर ले जाता है। अंत के समय के बाद पर रविवार के कानून से पहले जो चेतावनी संदेश आया वो 11 सितंबर 2001 था। वो चेतावनी देता है कि इतिहास की उस अवधि के समापन पर 11 सितंबर 2001 को आई और तुरंत रोकी गई तीसरी विपत्ति अप्रत्याशित रूप से फिर प्रहार करेगी और हजारों शहर नष्ट हो जाएंगे। जब वो विनाश आएगा तब शैतान अपना अद्भुत कार्य आरंभ करेगा और वो कार्य शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय आरंभ होगा।
ओह, काश परमेश्वर की प्रजा को उन हजारों नगरों पर आने वाले आसन विनाश का एहसास होता जो अब लगभग मूर्ति पूजा में डूबे हुए हैं, परंतु जिन बहुतों को सत्य का प्रचार करना चाहिए वे अपने भाइयों पर आरोप लगा रहे हैं और उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। जब परमेश्वर की परिवर्तित करने वाली शक्ति मनों पर आएगी तो एक निर्णायक परिवर्तन होगा। लोगों में आलोचना करने और दूसरों को गिराने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। वे ऐसी स्थिति में खड़े नहीं होंगे जो दुनिया तक प्रकाश के पहुंचने में बाधा डाले। उनकी आलोचना, उनका दोषारोपण समाप्त हो जाएगा। शत्रु की शक्तियां युद्ध के लिए एकत्र हो रही हैं। भीषण संघर्ष हमारे सामने है। मेरे भाइयों और बहनों, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, मसीह के साथ बंधो। तुम न कहो सांठगांठ, न उनके भय से डरो, न भयभीत हो। सेनाओं के प्रभु को आप ही पवित्र मानो और वही तुम्हारा भय हो और वही तुम्हारा डर बने और वो तुम्हारे लिए एक शरण स्थान होगा, परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर खाने का पत्थर और ठेस खाने की चट्टान रहेगा और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा और उनमें से बहुत से ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। दुनिया एक रंगमंच है। इसके अभिनेता अर्थात उसके निवासी अंतिम महान नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर दृष्टि से ओझल हो गए हैं। मानव जाति के बड़े समूहों में कोई एकता नहीं है सिवाय इसके कि लोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। ईश्वर देख रहे हैं, अपने विद्रोही प्रजाजनों के विषय में उनके उद्देश्य पूरे होकर रहेंगे। दुनिया मनुष्यों के हाथों में सौंपी नहीं गई है। यद्यपि ईश्वर कुछ समय के लिए भ्रम और अव्यवस्था के तत्वों को हावी होने दे रहे हैं, अधोलोक से आने वाली एक शक्ति इस नाटक के अंतिम महान दृश्य लाने के लिए काम कर रही है। शैतान मसीह के रूप में आ रहा है और उन लोगों में हर प्रकार की अधर्मपूर्ण छल कपट के साथ कार्य कर रहा है जो गुप्त समाजों में आपस में बंध रहे हैं। जो लोग गठबंधन के जुनून के आगे झुक रहे हैं वे शत्रु की योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कारण के बाद परिणाम आएगा। अधर्मिता लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। भ्रम और अव्यवस्था ने संसार को भर दिया है और शीघ्र ही मनुष्यों पर एक बड़ा आतंक आने वाला है। अंत बहुत निकट है। हम जो सत्य को जानते हैं हमें उस बात के लिए तैयार होना चाहिए जो शीघ्र ही एक अत्यंत अप्रत्याशित आघात की तरह संसार पर टूट पड़ेगी। रिव्यू एंड हेरॉल्ड, 10 सितंबर 1903।
1789 में संविधान के प्रवर्तन द्वारा जिसका प्रतिरूप दिखाया गया था वो चेतावनी तीसरे स्वर्गदूत की चेतावनी है जो दूसरे कादेश की ओर लौटती है जब 144,000 की मुहरबंदी शुरू होती है। वो चेतावनी प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के पहले स्वर की चेतावनी है, और उस समय न केवल न्यूयॉर्क शहर की महान इमारतें ढह गईं, बल्कि संविधान का मूल सार भी बदल गया। संविधान अंग्रेजी कानून पर आधारित होकर लिखा गया था, जिसका मूल सिद्धांत सरलता से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जब तक दोष सिद्ध न हो व्यक्ति निर्दोष है। संविधान उस व्यवस्था को अस्वीकार करने के उद्देश्य से लिखा गया था, जिसे रोमन कानून के रूप में जाना जाता है, जिसका मूल सिद्धांत सरलता से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जब तक निर्दोष सिद्ध न हो व्यक्ति दोषी है। समसत 8-5 में वन प्रदेश से आई चेतावनी, जिसका प्रतिनिधित्व संविधान करता है, 11 सितंबर 2001 की चेतावनी का प्रतिनिधित्व करती है, और न केवल जलती हुई इमारतों ने उस इतिहास पर शब्दशः पूर्ति की मुहर लगा दी, बल्कि पैट्रियट एक्ट का यूं कहे तो पारित होना भी उस चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता था। पैट्रियट एक्ट आतंकवाद को अवरोधित और रोकने के लिए आवश्यक उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराकर अमेरिका को एकजुट और सशक्त बनाने का अधिनियम 2001। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया था। ये विधेयक 23 अक्टूबर 2001 को प्रतिनिधि सभा में और 24 अक्टूबर 2001 को सीनेट में पेश किया गया। 26 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाया। पैट्रियट एक्ट का उद्देश्य सरकार की आतंकवादी कृत्यों की जांच और उन्हें रोकने की क्षमता बढ़ाना तथा निगरानी और कानून प्रवर्तन की शक्तियों का विस्तार करना था, और इसने अंग्रेजी कानून के उस बुनियादी और मूलभूत सिद्धांत को नकार दिया जो कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो व्यक्ति निर्दोष है। आज भी सरकार के भीतर का अभिजात वर्ग इसका उपयोग कानून की विधिसम्मत प्रक्रिया, निजता और निष्पक्ष मुकदमों को दरकिनार करने के लिए करता है। हम अपने अगले लेख में इस अध्ययन को जारी रखेंगे।
इस भयावह और गंभीर समय में हमारी दशा क्या है? हाय, कलीसिया में कितना अभिमान, कितना पाखंड, कितना छल, सजधज का कितना प्रेम, कितनी उच्छृंखलता और मनोरंजन और श्रेष्ठता की कैसी लालसा। इन सब पापों ने मन को ऐसा धूमिल कर दिया है कि शाश्वत बातों को हम पहचान ही नहीं पाए। क्या हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन न करें ताकि हम जान सकें कि इस संसार के इतिहास में हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम उस कार्य के विषय में समझदार न बने जो इस समय हमारे लिए किया जा रहा है, और उस स्थिति के विषय में भी जिसमें हमें पापियों के रूप में रहना चाहिए जब ये प्रायश्चित्य का कार्य आगे बढ़ रहा हो? यदि हमें अपनी आत्माओं के उद्धार का कोई भी ध्यान है तो हमें एक निर्णायक परिवर्तन करना होगा। हमें सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु को खोजना चाहिए। हमें अपनी आत्मा के गहरे खेद के साथ अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए ताकि वे मिटा दिए जाएं। हमें अब उस मोहक भूमि पर और नहीं ठहरना चाहिए। हम अपने परीक्षा काल के अंत के निकट तेजी से पहुँच रहे हैं। हर आत्मा ये पूछे, मैं परमेश्वर के सम्मुख किस स्थिति में हूँ? हमें नहीं पता कि हमारे नाम मसीह के मुख से कितनी शीघ्र लिए जा सकते हैं और हमारे मामलों का अंतिम निर्णय हो जाएगा। ये निर्णय ओह क्या होंगे! क्या हमें धर्मियों में गिना जाएगा या दुष्टों में? कलीसिया उठ खड़ी हो और परमेश्वर के सामने अपनी पृष्ठगामिता का पश्चाताप करे। पहरेदार जागे और तुरही को स्पष्ट ध्वनि दे। ये एक स्पष्ट चेतावनी है जिसे हमें घोषित करना है। परमेश्वर अपने दासों को आज्ञा देता है, जोर से पुकार, बिल्कुल न रुक, अपनी वाणी को तुरही की तरह ऊंचा कर और मेरे लोगों को उनके अपराध और याकूब के घराने को उनके पाप दिखा। लोगों का ध्यान अवश्य खींचा जाना चाहिए। जब तक ये न हो सब प्रयास निष्फल हैं। चाहे स्वर्ग से कोई दूत उतरकर उनसे बोले तो भी उसके वचन उतने ही निष्फल होंगे जितना मृत्यु के ठंडे कान में बोलना। कलीसिया को जागकर कार्य में लगना होगा। जब तक वो मार्ग तैयार न करे परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं आएगा। हृदय की गंभीर जांच पड़ताल होनी चाहिए। एकजुट लगन से की जाने वाली प्रार्थना हो और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामा जाए। प्राचीन समय की तरह शरीर पर टाट ओढ़ना नहीं, पर आत्मा का गहरा दीन होना चाहिए। आत्मा प्रशंसा और आत्म उत्थान के लिए हमारे पास तनिक भी कारण नहीं है। हमें परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे अपने आप को दीन करना चाहिए। वो सच्चे खोजियों को सांत्वना देने और आशीष देने को प्रकट होगा। कार्य हमारे सामने है, क्या हम इसमें जुटेंगे? हमें शीघ्रता से काम करना है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है, हमें प्रभु के महान दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास खोने के लिए समय नहीं, स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों में उलझने का समय नहीं। दुनिया को चेताया जाना है, दूसरों के सामने प्रकाश लाने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को उसका कार्य सौंप रखा है, हर किसी की एक भूमिका है, और हम अपनी आत्माओं को संकट में डाले बिना इस कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। हे मेरे भाइयों, क्या आप पवित्र आत्मा को दुखी करेंगे और उसे दूर कर देंगे? क्या आप उसकी उपस्थिति के लिए तैयार ना होने के कारण धन्य उद्धारकर्ता को बाहर ही रख देंगे? क्या आप सत्य के ज्ञान के बिना आत्माओं को नष्ट होने के लिए छोड़ देंगे? क्योंकि आप अपने आराम से इतना प्रेम करते हैं कि आप वो बोझ उठाने को तैयार नहीं जो यीशु ने आपके लिए उठाया था। आओ हम नींद से जागें, सावधान रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता फिरता है, ये देखते हुए कि किसे वो निगल सके। रिव्यू एंड हेराल्ड, 22 मार्च 1887।